हरे कृष्णा। तो आज हम सातवें स्कंद के आठवें अध्याय के 16वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक सामने बोर्ड पर लिखा है, आप हमारे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। सविक्रमन् पुत्र वधे सुरोजसा सविक्रमन् पुत्र वधे सुरोजसा निशम्य निर्ह्रादम् अपूर्वम् अद्भुतम् निशम्य निर्ह्रादम् अपूर्वम् अद्भुतम् अन्तः सभायां न ददर्श तत्पदम् अन्तः सभायां न ददर्श तत्पदम् वितत्र सूर्येण सुरारियूथपः वितत्र सुरायेन सुरारियूथपः। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की। सह वह हिरण्यकश्यपु विक्रमन अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पुत्र वध इप्सु अपने ही पुत्र का वध करने का इच्छुक ओजसा अत्यंत बलपूर्वक निशम्या सुनकर निर्ह्रादम भयानक ध्वनि को अपूर्वम पहले कभी नहीं सुनी गई अद्भुतम अत्यंत अद्भुत अंतः सभायाम सभा के भीतर ना नहीं ददर्श देखा तत्पदम उस भयानक आवाज के स्तोत्र को वित्रसु भयभीत हुए ये ना जिस ध्वनि से सुर अरियूथपा असुरों के अन्य नेता हिरण्यकश्यपु ही नहीं। अनुवाद कृपया हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा। अपने ही पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकश्यपु ने जो इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था जब एक अद्भुत भीषण घोर ध्वनि सुनी जिसे इसके पूर्व उसने कभी नहीं सुना था इसी ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हुए उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम को कोई नहीं ढूंढ पाया। तात्पर्य कृपया सुनिएगा। भगवद गीता में कृष्ण यह कहकर अपनी व्याख्या करते हैं रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेशु शब्दाखे पौरुषम ऋषु। हे कुंती पुत्र अर्जुन मैं ही जल का स्वाद सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश वैदिक मंत्रों का ओम शब्द तथा आकाश एवं मनुष्य के पुरुषार्थ की ध्वनि हूँ। यहाँ पर भगवान ने आकाश में भीषण ध्वनि शब्दाखे सर्वत्र अपनी उपस्थिति प्रकट की है। अब हिरण्यकश्यपु जैसे असुर भगवान की परम नियंत्रण शक्ति का अनुभव कर सकते हैं और इस प्रकार हिरण्यकश्यपु भयभीत हो गया। मनुष्य चाहे कितना बलशाली क्यों ना हो वे वज्रपात की ध्वनि से सदैव भयभीत होता है। इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु तथा उसके सारे संगी असुर उसे उस ध्वनि के रूप में उपस्थित परमेश्वर की उपस्थिति से भयभीत थे यद्यपि वे उस ध्वनि के उद्गम का पता नहीं लगा पाया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज का श्लोक भय पे इसलिए आप सब भयभीत लग रहे हैं पहले से। तो जैसा कि यहाँ पर जो अभी कथा चल रही है यहाँ पर वो है कि भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध। तो आप में से काफ़ी भक्त जो कई समय से आ रहे हैं भागवतम कक्षा में निरंतर, तो उन्हें पता होगा क्या संदर्भ चल रहा है कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी हैं। तो प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ इस खंभे में भी हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने तलवार लेके हाथ में उस खंभे पर प्रहार किया। तो हालांकि अभी भी सस्पेंस ही है, अभी भी भगवान खंभे से निकले नहीं हैं, पर जब उसने प्रहार किया तो उस खंभे में से बहुत ही तेज एक ध्वनि निकली। तो सबसे पहले यहाँ पर इस कथा में जो बताया जा रहा है कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु से पूरा ब्रह्मांड, हर व्यक्ति हर जीव डरता था, हर देवी देवता डरते थे ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर, केवल एक प्रहलाद महाराज एक ऐसे बच्चे थे छोटे से बालक जिनसे जिन्हें हिरण्यकश्यपु से कोई भय नहीं था। और हिरण्यकश्यपु के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था ये, क्योंकि अपना बच्चा नहीं सुनता। अभी किसी को भी आप कुछ बोलोगे तो वो कहेगा जी हमें तो समझा रहा है, तेरा बेटा तो तेरी सुनता नहीं है। तो बहुत इंसल्टिंग था उसके लिए कि ये मजाक बन के रह गया, मेरा बेटा पूरा ब्रह्मांड मेरे से डरता है, मेरा बेटा छोटा सा बच्चा है मेरे से डरता नहीं है। समाज में ये बात फैलेगी तो कितनी निंदा होगी, कितनी बदनामी होगी यहाँ पर। तो सम हॉर अदर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो हालांकि ये देखा जाता है इस भौतिक समाज में या किसी भी स्थान पर कि जो भी हमारे बहुत निकट हैं, जो भी हमारे बहुत क्लोज हैं, उनके पास एक कैपेसिटी, सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है हमारे को हर्ट करने की। जैसे ध्रुव महाराज की कथा में भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से ध्रुव महाराज जब अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे तो उनकी सौतेली माँ ने मना किया कि आप नहीं बैठ सकते, अगर आपको अपने पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। अगर ये सौतेली माँ के अलावा और किसी ने बोला होता तो शायद ध्रुव महाराज ने इतना सीरियसली ना लिया होता, पर क्योंकि अपनी माता ने ये बोला है शब्द, क्योंकि पहले सौतेली माँ, क्योंकि एक फैमिली रिलेशन इतने अच्छे होते थे कि ये सब चीजें नहीं देखी जाती थी कि सौतेला कौन है, अपना बच्चा कौन है। तो ध्रुव महाराज इतने हर्ट फील हुए, अगर किसी और बच्चे ने या किसी बाहर के व्यक्ति ने बोला होता तो शायद इतना सीरियसली ना लिया होता, अपनी माता ने इंसल्ट कर दिया तो बहुत सीरियसली, क्योंकि इतने क्लोज थे और ज्यादा पोटेंसी थी उनके पास, ज्यादा कैपेसिटी थी हर्ट करने की। तो उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के पास भी बहुत कैपेसिटी थी हिरण्यकश्यपु को हर्ट करने की। तो जैसा कि इस श्लोक में बताया गया कि किस प्रकार से जब हिरण्यकश्यपु ने उस खंभे पे प्रहार किया जोर से तो उस खंभे में से बहुत तेज ध्वनि निकली। अभी जब प्रिपेयर कर रहे थे तो हमें याद आया कि लगभग 4-5 साल पहले एक प्ले किया था, नाटक किया था यहाँ पर, तो उसमें हमने स्टेज प्रोग्राम पे एक थर्माकोल का खंभा बनाया था हिरण्यकश्यपु के प्ले में, और किसी भक्त ने कुछ जो गोले बम होते हैं बड़े बड़े उनको मिलाकर एक बहुत बड़ा बम बनाया था और वो उस खंभे के नीचे लगाया था। तो जब उस खंभे को आग लगी तो सबको तो पता था क्या होने वाला है। तो हिरण्यकश्यपु कान बंद करके कोने में खड़ा हो गया और नरसिंह भगवान जो खंभे के पीछे से थे वो कूद कर स्टेज के नीचे घुस गए। तो क्योंकि ये ध्वनि, क्योंकि देखिए ना वो जो छोटा सा अगर कोई बम फटता है तो उसके अंदर थोड़ी सी आग निकलती है, थोड़ी सी आवाज आती है, उससे सब इतना घबरा गए थे कि जितने बच्चे आसपास थे जो स्टेज के ऊपर कूदने के लिए हमेशा दौड़ते हैं, जब उन्होंने छोटी सी वो आग देखी कि कुछ होने वाला है सब पीछे पीछे हट गए। तो आप सोचिए ऐसा खंभा फट रहा हो जिसमें से धमाका निकल रहा है और उसमें से भगवान निकलने वाले हैं, तो कितनी तेज ध्वनि निकली होगी उसमें से। तो इस ध्वनि को सुनकर ना केवल हिरण्यकश्यपु को घबराए, इसके अलावा जितने भी असुरगण थे सब घबरा गए, सबका हृदय भयभीत हो गया, सब डरने लग गए कि क्या होने वाला है, ये आवाज कहां से आ रही है, उस आवाज के स्रोत को ढूंढ रहे थे कहां से आवाज आ रही है, पर उनको मिल नहीं रहा था। तो दरअसल हर आसुरी व्यक्ति के अंदर और हर आसुरी मेंटालिटी वाले व्यक्ति के अंदर ये भयभीत होने का लक्षण रहता है। जैसे गोवर्धन लीला में हम देखते हैं जब इंद्र ने भगवान के पास क्षमा मांगने के लिए आए तो इंद्र ने भगवान की प्रार्थना करनी शुरू की और प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हे भगवान आप तो बहुत महान हैं, आप अपने भक्तों के जो गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तो उनकी जो प्रार्थनाएं थी बहुत फ्रूटिव थी, भय से भरी हुई थी उनकी प्रार्थनाएं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अभी तक तो कृष्ण अपने भक्तों को बचाने में बिजी थे, अब वो बिजी नहीं रहे, अब वो मेरे से बदला लेंगे। तो हर एक डेमोनिक व्यक्ति के अंदर, डेमोनिक मेंटालिटी के व्यक्ति के अंदर ये नेचर रहता है कि अपने ही स्वभाव जैसा उसका स्वभाव रहता है, वो उसको लगता है कि सबका स्वभाव वैसा ही है ना, उस इंद्र को लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर रिवेंज की भावना थी, ये रिवेंज की भावना कृष्ण में भी है, पर कृष्ण में, भगवान में ये भावना नहीं रहती। भगवान में, भगवान के भक्तों में ये भय, ये सब, ये दुर्गुण भगवान के भक्तों में नहीं रहते। तो मृत्यु से बचने के लिए इंद्र को भय था कि उसको मृत्यु दंड होगा, भगवान उसको मारेंगे। इस भय से बचने के लिए वो क्या करता, प्रार्थनाएं करा था, जो बहुत ही फ्रूटिव मेंटालिटी से भरी हुई थी, क्योंकि मृत्यु का भय हर किसी के अंदर रहता है ना। लोग जिम जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है, मृत्यु से बच जाए किसी प्रकार से, किसी ना किसी प्रकार से मृत्यु ना आए बस। हालांकि उन्हें ये तो ध्यान रखना चाहिए कि जब यमदूत आएंगे लेने के लिए तो फोटोग्राफ लेके नहीं आएंगे आपकी, है ना, कि मैं तो व्हाइट बाल वाले को ढूंढने आया था, ये तो काले बाल वाला बैठा है ना। ऐसा नहीं कि बाल काले करके हम लोग मृत्यु को या धोखा दे देंगे किसी तरीके से, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये जो मृत्यु का भय, ये हर किसी के अंदर रहता है, और हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर, जो भी कृष्ण भावना भावित नहीं है उसके अंदर भय हमेशा रहता है। अपने भविष्य को लेकर भय है ना, भविष्य में क्या होगा, माता पिता में भय रहता है कि मेरे बच्चे बड़े होकर मेरी रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, मेरे जो कमाएंगे नहीं कमाएंगे। पत्नी को भय रहता है कि मेरे पति मेरी रक्षा करेगा नहीं करेगा, है ना, पति पैसा कमाने में, प्रॉपर्टी इकट्ठी करने में लगा रहता है, किसी ना किसी प्रकार से, मतलब है कि अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। हालांकि भारत में इतनी दुर्गति नहीं है अभी, पर पाश्चात्य देशों में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर जब व्यक्ति अपनी नौकरी पर जाता है तो उसको ये भय होता है कि मेरी नौकरी बची होगी नहीं बची होगी, और जब नौकरी से वापस आता है घर में तो उसको ये गारंटी नहीं होती कि मेरी पत्नी घर में होगी नहीं होगी, ये भय रहता है उसके अंदर। इतना जो समाज में दुर्गुण फैला हुआ है, तो हर व्यक्ति भयभीत है किसी न किसी चीज को या किसी न किसी व्यक्ति को, जिससे उसकी आसक्ति है उससे छिन जाएगा, इसके प्रति वो बहुत भयभीत रहता है। हालांकि एक बहुत ही सरल सा प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति भय में होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसा लगता है व्यक्ति? जब भय में होता है तो व्यक्ति बहुत खुश होता है क्या? डरा हुआ होता है, टेंस्ड है ना, कंफ्यूज होता है, किसी ना किसी प्रकार से मौका ढूंढता है उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। पर स्थिति क्या है कि हम हर भयभीत स्थिति को भी इंजॉय करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि उसमें से भी, उस फियरफुल सिचुएशन में से भी कुछ रिलिश कर लें, कुछ आनंद ले लें। इससे लोग क्या करते हैं, हॉरर फिल्म्स देखते हैं। हॉरर फिल्म देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम शांति से बैठ सकते हैं हॉरर फिल्म देख के। कैसा फील होता है हॉरर फिल्म देख के? डरा हुआ व्यक्ति है ना, फिल्म देखते समय भी डरा हुआ रहता है और फिल्म देखने के बाद भी डरा हुआ रहता है। जब रात को उसकी नींद खुलती है, खिड़की की तरफ ध्यान जाता है तो उसको ध्यान आता है कि कहीं कोई ढांचा तो नहीं लटक रहा बाहर, कोई भूत तो नहीं है, है ना। जब सुबह सुबह सिंक पे मुंह धोने के लिए जाता है, वॉश बेसिन पे, तो उसको डर लगता है इसमें से कोई हाथ तो नहीं निकलेगा जो उसका गला पकड़ लेगा। ये भय उसके अंदर रहता है, क्यों? क्योंकि उसको चीज को इंजॉय करना चाहता था, पर उसको इंजॉय तो कर ही नहीं सकता उसे, है ना। फियर को इंजॉय थोड़ी किया जा सकता है। पर अज्ञानता के कारण हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं किसी ना किसी प्रकार से इस भयभीत स्थिति को भी इंजॉय कर लूं, और अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाता कि नहीं, सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये सिम्टम है दरअसल एक डेमोनिक मेंटालिटी के व्यक्ति का, आसुरी व्यक्ति का, कि वो हर ऐसी चीज में आनंद ढूंढने की कोशिश करता है जो सत्य नहीं है, असत्य है। उसका भगवान के प्रति कोई ट्रस्ट नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता, अपने आप को वो सुप्रीम कंट्रोलर मानता है, नियंता। उसको लगता है कि मैं ही डूअर हूं और मैं ही किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता हूं। और भय किस प्रकार का, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई सेवा कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में वो देखता है कि एक ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति आ गया है ना, एक ऐसा बिजनेसमैन आ गया जिसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर भय आ जाता है। व्यक्ति जब मंदिर में आता है, मंदिर में सेवा करता है, वो देखता है कि कोई ऐसा भक्त आ गया है जो सीरियस है, टैलेंटेड है, ओबीडियंट है ना, गुरु के आदेशों का पालन करने वाला है, अथॉरिटीज को फॉलो करने वाला है। उस व्यक्ति के अंदर, सामने वाले व्यक्ति के अंदर भय आ जाता है कि अब मेरी सिचुएशन का क्या होगा, मेरी फॉलोइंग का क्या होगा, है ना। अगर ये गुरु को मानने वाला व्यक्ति आ गया तो सब इसी को फॉलो करेंगे क्योंकि ये गुरु को फॉलो करता है, मुझे तो कोई फॉलो करेगा ही नहीं, मेरी स्थिति का क्या होगा, है ना। तो इस भय से बचने के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ, किस ना किसी चीज का शेल्टर लेता है, जैसे पॉलिटिक्स, र्यूमर्स, किस ना किसी प्रकार की सिंफुल एक्टिविटी को अपनाता है जिससे उस व्यक्ति को ड्रैग किया जाए, किस तरीके से खींचा जाए नीचे, जिस प्रकार से हिरण्यकश्यपु हालांकि अपना प्रभुत्व जमाने के लिए उसने क्या किया, बहुत पाप कर्म किए भय से बचने के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यपु शुरू से बहुत भयभीत था। ऐसा नहीं कि वो बहुत कॉन्फिडेंस में था, उसको पता था कि हिरण्याक्ष को किसने मारा है, विष्णु ने मारा है, इसलिए उसके अंदर भय था और विष्णु से बचने के भय से ही उसने तपस्या की कि ऐसी शक्ति लूंगा ताकि विष्णु मुझे मार ना सके। उस भय से बचने के लिए उसने तपस्या की और ये तपस्या करने के बाद उसने कई पाप कर्म किए, है ना। पाप कर्म जितने बढ़ते जाते हैं, जितना हम पाप कर्म करते हैं उतना ही हमारा भय बढ़ता रहता है, और पाप कर्म करते हैं और भय बढ़ता है और इनसिक्योरिटी बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भक्त हैं वो कभी फियरफुल नहीं होते, भक्त भयभीत नहीं होते, पर भक्तों के भयभीत होने का जो कारण है वो अलग रहता है। एक भक्त किस लिए भयभीत रहता है कि जो मनुष्य जीवन उसे प्राप्त हुआ है ये कहीं व्यर्थ ना चले जाए। ह्यूमन लाइफ जो इतनी मुश्किल से इतने जन्मों के बाद मिलती है ये कहीं व्यर्थ ना चले जाए, कोई भी समय ऐसा ना चले जाए जब वो कृष्ण का स्मरण किए बिना रह जाए, ये भक्तों को भय रहता है। भक्तों को भय रहता है कि वो अपराध ना करें, ये भय भक्तों के अंदर रहता है। एक असुर व्यक्ति के अंदर क्या भय रहता है, उसके अंदर भय होता है कि मेरा कंट्रोल ना छूट जाए, मेरा जो नियंत्रण है कंट्रोल है वो कंट्रोल निकल ना जाए। पर एक भक्त के अंदर क्या भय रहता है कि किस ना किसी प्रकार से मैं भगवान की अच्छी सेवा कर सकूं। यशोदा माता में क्या भय रहता था, कृष्ण की सेवा करने का, है ना। कोई भी असुर होता था तो यशोदा माता क्या करती थी, प्रोटेक्शन के लिए, कृष्ण की रक्षा के लिए भयभीत होती थी कि कृष्ण का क्या होगा, तो ब्राह्मणों को बुलाती थी, गोजल छिड़कती थी, गाय के गोबर से लेप करवाती थी, सारे भय से, मतलब उनको भय था यशोदा माता को पर कृष्ण की सेवा के प्रति, गोपियों को भय था पर कृष्ण की सेवा करने के प्रति, कैसे सेवा अच्छी की जा सके, ये भय था। और हालांकि श्रीमद् भागवतम की कोई भी अगर आप स्थिति ले लें जिसमें भक्त के जीवन में भय आया है, तो भक्त ने एक ही चीज किया है, भगवान को पुकारा है, कृष्णा। पर एक असुर के जीवन में कभी भी भय आता है तो वो भगवान को नहीं पुकारता, उसको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं अपने आप इसे टैकल कर लूंगा, इस स्थिति से मैं अपने आप निकल जाऊंगा, मेरे को भगवान का सहारा लेने की, किसी भगवान जैसा तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मेरे को किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप हूं, सेल्फ मेड मैन हूं मैं, मेरे को किसी की चीज की जरूरत नहीं है। पर भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में कि मेरे भक्त के जीवन में जिस भी चीज की कमी होती है वो मैं पूरी करता हूं और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं, और भक्त को इस बात के बारे में पता होता है, इसलिए भक्त कभी भी भयभीत नहीं रहता, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता है। जिस प्रकार से एक पिता, एक बच्चा अगर अपने पिता की गोद में है तो वो भयभीत नहीं रहेगा, उसके अंदर कोई डर नहीं है कि मेरे पिता मेरे पास हैं, मेरी रक्षा करेंगे, जो भी मेरी नीड्स है मुझे प्रोवाइड करेंगे, मुझे देंगे वो। पर एक ऐसा व्यक्ति जो अनाथ है, अपने मालिक के साथ नहीं है, अपने पिता के साथ नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है, वो हमेशा भयभीत रहेगा, घबराया हुआ रहेगा कि मेरे साथ क्या होगा। जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, जब वो बिल्ली के मुंह में होता है तो घबराता नहीं है, उसको पता है कि मेरी माँ है, मेरी रक्षा करेगी, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर एक चूहा होता है अगर, तो वो बहुत भयभीत होता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी मृत्यु सामने है। तो इसी प्रकार से असुर भगवान से भयभीत रहते हैं क्योंकि वो भगवान को मृत्यु रूप में देखते हैं, मृत्यु के रूप में। हालांकि भयभीत तो अगर देखें तो कभी कभी कृष्ण और गुरु, और कभी कभी रिप्रेजेंटेटिव, जो गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी ऐसे सिचुएशंस लाते हैं भक्तों के जीवन में जिससे भक्तों के जीवन में भय की स्थिति आती है। किस कारण से, ताकि वो भक्त और जल्दी से जल्दी भगवान को शरणागत हो पाए, सरेंडर कर पाए। तो श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है ये भय है, ये भय का उत्पन्न कहां से होता है। हर जीव में भय है ये तो हमें समझ आ गया, पर भय का उत्पन्न कैसे होता है। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 37वें श्लोक में बताया गया है, जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। किस चीज से पहचान करता है अपनी, किसी न किसी गलत चीज से अपनी पहचान करता है। इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है तो वह भगवान के दास रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, यह मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। तो उस जीव के अंदर भय कहां से आता है, जब उसकी जो तो रियल स्थिति है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, जब इस स्थिति को भूल जाता है और अज्ञानता में रहता है तो भय उस अज्ञानता से प्रकट होता है। श्रीधर स्वामी बता रहे हैं इसमें कि श्रीधर स्वामी के अनुसार यह आपत्ति की जा सकती है कि चूंकि भय अज्ञान जन्य होता है, अतएव इसे ज्ञान द्वारा भगाया जा सकता है। तो इंग्लिश में इसको डायरेक्टली बताया गया, फियर इज कॉज्ड बाय इग्नोरेंस, है ना। प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे कि भय है, भय की उत्पत्ति कहां से होती है, अज्ञानता से। अज्ञानता से भय निकलता है और अज्ञानता में ही व्यक्ति गलत कार्य करता है। इसी के तात्पर्य में बता रहे हैं आगे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका की है कि जब जीव में स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न होता है तो वह भौतिक जगत में आने के लिए बाध्य हो जाता है। यहां वे अनेक प्रकार के शूद्र तथा अवांछित आचरणों में भाग लेता है जिनसे उसके लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जीव क्या करता है, जब अपनी स्थिति को भूल जाता है तो इस भौतिक संसार के क्या बता रहे हैं, शूद्र कार्य, पेटी पेटी छोटी छोटी चीजें होते हैं उसमें भाग लेने लग जाता है। हर छोटी चीज को सीरियसली लेता है और जो महत्वपूर्ण चीज है जिसपे उसको ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, उसको निग्लेक्ट करता है। जो भी पेटी चीज है, जो भी उसकी बॉडी से रिलेटेड है, उस चीज पे बहुत फोकस करता है, पथ भ्रष्ट रहता है। कोई छोटा बच्चा है मान लीजिए, कोई भी व्यक्ति है, अगर अपने पथ से खो जाएगा, गुम जाएगा, तो क्या करेगा, भयभीत होगा, रोएगा। तो हर जीव भयभीत किस लिए है, क्योंकि पथ भ्रष्ट है। जो रियल मार्ग है उसका, असली मार्ग है, वो भूल चुका है। जो रियल उसकी ड्यूटीज है उसे भूल चुका है और किसमें लगा है, जो पेटी पेटी छोटी छोटी चीजें, शूद्र चीजें हैं, बता रहे हैं शूद्र चीजों में, अवांछित आचरणों में भाग लेता है, जिनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए उसमें वो डिजायर करता है। आगे बता रहे हैं, जब जीव यह समझ लेता है कि वे भौतिक शरीर नहीं अपितु भगवान का नित्य दास है, तो उसका भय जाता रहता है। जैसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इस भागवत धर्म में भक्तों को भव बंधन से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति में अपने को लगाता है उसके लिए यह भय अपने आप हट जाता है। तो भक्तों को बता रहे हैं इसमें घबराने की बात नहीं है। जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है उसके लिए भय अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जीव को आध्यात्मिक स्तर पर श्रेष्ठ आश्रय खोजना चाहिए, अन्यथा वे संसार की भयपूर्ण स्थिति में वापस लौट जाएगा। तो अगर जीव क्या करेगा, जो डिजायरिंग चीज है, जो भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, अगर इसमें अपने आप को नहीं लगाता तो क्या होगा, दोबारा पुनः मुष्टिक भवा, है ना, दोबारा आप वो क्या देखेगा कि दोबारा ये भयपूर्ण स्थिति में अपने आप पहुंच जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाया। जैसे कुछ लोग जो भगवान में लीन होना चाहते हैं, वो भगवान में लीन तो होना चाहते हैं पर जैसे ही उनके पुण्य खत्म होते हैं तो दोबारा उनको नीचे आना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवतम के ही 11वां स्कंद के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में बता रहे हैं यहां पर कि मैं मानता हूं कि जिसकी बुद्धि भौतिक क्षण भंगुर जगत को ही मिथ्या पूर्वक आत्मस्वरूप मानने से निरंतर विचलित रहती है, वे अच्युत भगवान के चरण कमलों की पूजा द्वारा ही अपने भय से मुक्ति पा सकता है। ऐसी भक्ति से सारा भय दूर हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, भौतिक क्षण भंगुर जगत को ही मिथ्या पूर्वक आत्मस्वरूप मानने से, है ना, असत्येर सत्य करी मानी, जो भी असत्य चीज है उसे उसने सत्य मान लिया है। तो आप इस श्लोक को पढ़ सकते हैं, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। इसमें 3-4 आचार्यों की टीका है, मैं एक चीज में पढ़ूंगा बस। बता रहे हैं, साधक भक्ति की अवस्था में भी जिसमें भक्ति को विधि विधानों द्वारा संपन्न किया जाता है, नव दीक्षित भक्त को भगवान की कृपा से निर्भयता का अनुभव होता है। तो नव दीक्षित भक्त भी जो साधन भक्ति का पालन कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, उसे भी क्या होता है, निर्भयता का अनुभव होता है जब वो इन नियमों का पालन करता है। जो जो भौतिक प्रौढ़ भक्ति प्रौढ़ होती जाती है, भगवान भक्ति भक्त को अपने रूप दिखलाते हैं और तब सारा भय जाता रहता है। तो क्या है, जब व्यक्ति साधन अवस्था में क्यों ना हो, साधन अवस्था में भी उसका भय दूर होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि जब भक्ति के चरम लक्ष्य में पहुंच जाएगा तभी वो अपने आप को फील कर पाएगा कि उसमें कोई भय नहीं है। जब वो भक्ति का मार्ग शुरू ही क्यों नहीं करता, है ना, एक भक्त है उसको पता है मृत्यु आनी है पर वो मृत्यु से घबराता नहीं है, वो उसके लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को, उसकी तैयारी करता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में बताया गया है, इस भौतिक संसार को एक स्वप्न के से कंपेयर किया गया है, ड्रीम के समान सपना। और सपने में हम लोग क्या कर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, है ना। सपने में हम देख रहे हैं कि एक शेर है, शेर हमारे पीछे भाग रहा है, सपने में ही हम घबरा रहे हैं। पर इससे निकलने का तरीका क्या है, अगर हम इससे बचना चाहते हैं, इस सपने से बाहर निकलें। जैसे ही हम सपने से बाहर निकलेंगे, हम क्या देखेंगे, भय की स्थिति अपने आप ही दूर हो गई है। तो ये समझना बहुत जरूरी है इसमें। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि इस भय से अगर हम बचना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है कि अज्ञानता, इग्नोरेंस, जिसमें हम अभी डूबे हुए हैं, इस इग्नोरेंस से बचे। तो श्रीमद् भागवतम में, जो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, इसमें अलग अलग असुरों की चर्चा आती है और हर असुर को एक ना एक अनर्थ से कंपेयर किया है श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने। और इसमें से धेनुकासुर नामक असुर को कंपेयर किया गया है अज्ञानता से, मोड ऑफ इग्नोरेंस से, इग्नोरेंस ऑफ सोल, ये भूल जाना कि मैं हूं कौन, अपने आप को ये शरीर मानना और ये भूल जाना कि मैं आत्मा हूं, और हर प्रकार के भौतिक कार्य में लगना। तो धेनुकासुर नामक असुर को इसी से कंपेयर किया गया है। तो यहां पर धेनुकासुर की कुछ आचार्यों द्वारा इसमें टीका लिखते हैं कि धेनुकासुर जो था, उसका जो पिछला जन्म था, वो बलि महाराज का पुत्र था, उसका नाम था सहसीक। तो ये क्या कर रहा था धेनुकासुर, क्योंकि शुरू से ही अज्ञानता में था, तो गंधमादन पर्वत पर 10,000 स्त्रियों के साथ भोग कर रहा था। और अब सोचिए 10,000 स्त्रियों के साथ कोई भोग कर रहा हो, तो वहां पर स्थिति इतनी कामुक हो गई थी कि दुर्वासा मुनि उस गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, और दुर्वासा मुनि का नेचर ही ऐसा है कि वो किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं करते, है ना, बहुत टची नेचर है उनका। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि ने देखा कि गंधमादन पर्वत पर ऐसे एंजॉय कर रहा है और उसकी, दुर्वासा मुनि की तपस्या को भंग कर दिया, दुर्वासा मुनि ने तुरंत श्राप दिया उनको कि तुम गधे जैसा कार्य कर रहे हो मोड ऑफ इग्नोरेंस में, इसलिए क्या करो, तुम गधे ही बन जाओ। तो जब ये श्राप मिला उसको, तो उसने बहुत विनती की, बहुत प्रार्थना की कि कोई सॉल्यूशन बताइए इसका। तो फिर उन्होंने बताया कि 4,00,000 वर्ष के बाद, है ना, 400,000 ईयर्स के बाद जब बलराम जी आएंगे तो आपका उद्धार करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस कंटेक्स्ट में बता रहे हैं, दीस अनर्थास हैव टू बी रिमूव्ड बाय डिवोटीज ओन एंडेवर। ये जो अनर्थ है, इन्हें भक्तों को हटाना है बाय देयर ओन एंडेवर, अपने एंडेवर से, अपनी मेहनत से, अपने आप नहीं जाएंगे। और दो स्पेशल एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ द डिवोटी, और एक स्पेशल एफर्ट, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी उनको। हालांकि हर अनर्थ को, जितने भी अनर्थ बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में, हर अनर्थ को हटाने के लिए हमें कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, पर विशेष रूप से दो अनर्थ बताए हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने। वो अनर्थ क्या है, धेनुकासुर और प्रलंबासुर। धेनुकासुर रिप्रेजेंट करते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस को, और प्रलंबासुर रिप्रेजेंट करते हैं मोड ऑफ पैशन। तो रजोगुण और तमोगुण, दरअसल जितने भी बाकी अनर्थ हैं, इन दोनों के अंडर ही आते हैं, रजोगुण और तमोगुण के अंडर। इसलिए इन दोनों के कंटेक्स्ट में भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि हमें स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, विशेष रूप से कुछ मेहनत करनी पड़ेगी जिससे हम इससे बाहर निकल सके। तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं इसमें आगे, इफ वन वेरी सीरियसली टेक शेल्टर ऑफ ओन स्पिरिचुअल मास्टर, प्रेस फॉर इस मर्सी, अगर कोई अपने बहुत गंभीरता से अपने गुरु की शरण लेता है, प्रेस फॉर इस मर्सी, उसकी कृपा की याचना करते हैं अपने गुरु से, एंड प्रेस टू बलराम ऑल्सो, बलराम जी से प्रार्थना करते हैं और नित्यानंद प्रभु से, देन दे विल गेट शक्ति टू ओवरकम दीज टू अनर्थास। तो उनको क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी इन अनर्थों से बचने की। कैसे, जब हम गुरु को सीरियसली, गुरु की शेल्टर लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और बलराम जी से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इन दोनों लीलाओं में प्रलंबासुर को किसने मारा, प्रलंबासुर को किसने मारा है, बलराम जी ने। धेनुकासुर को किसने मारा, बलराम जी ने। तो इन दोनों असुरों को बलराम जी ने माना। तो इसी कंटेक्स्ट में यहां पर बता रहे हैं कि अगर हमें इससे बचना है तो हमें भी स्पिरिचुअल मास्टर की, क्योंकि जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो रिप्रेजेंट करते हैं बलराम जी को, नित्यानंद प्रभु को। क्योंकि नित्यानंद प्रभु, बलराम जी, ये कृष्ण के बहुत क्लोज हैं, बहुत समीप हैं ना, और बहुत क्लोजली कृष्ण को जानते हैं। इसलिए जब हम गुरु से, बलराम जी से प्रार्थना करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, हम इन अनर्थों से बच पाए। तो इस स्टोरी के अंदर, हालांकि श्रीमद् भागवतम में बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। अभी जो हम आगे का कंटेक्स्ट लेंगे जो इसमें कि ब्रजवासियों की स्थिति में जब भयभीत स्थिति आती है तो उनका रिएक्शन क्या रहता है कृष्ण की स्थिति में, तो गर्ग संहिता में किस प्रकार से स्टोरी को बताया गया है इसको थोड़ा चर्चा करेंगे। तो धेनुकासुर नामक जो असुर थे, दरअसल ये आए थे गोपाष्टमी के दिन, और ये वो दिन था जब कृष्ण पहली बार गाय चराने के लिए गए थे। हालांकि जब कृष्ण गाय चराने के लिए जा रहे थे तो नंद बाबा एग्रीड नहीं थे कि इनको गाय चराने ही नहीं जाए, क्योंकि कृष्ण क्या थे, बहुत छोटे बालक थे। आप सोचिए ना, 5 साल का कोई बच्चा है, आप उनको 9 लाख गाय चराने के लिए दे देंगे, डर नहीं लगेगा? तो नंद बाबा बहुत भयभीत थे। पर हुआ क्या कि कोई भी गाय बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसका कारण क्या था, आचार्य बताते हैं कि जो गाय थी उन्होंने अपने बछड़ों का संग किया था, और बछड़ों ने किसका संग किया था, कृष्ण का। तो इस माध्यम से गायों ने क्या किया था, डिवोटी एसोसिएशन किया था, भक्तों का संग किया था। तो गाय इतनी आसक्त हो गई थी कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण के साथ जाने से, कि उन्होंने मना कर दिया जाने से कि कृष्ण नहीं जाएंगे अब तो हम भी बाहर नहीं जाएंगे। तो नंद बाबा फोर्स थे, ही वॉज फोर्स टू सेंड, नंद बाबा मजबूर हो गए थे कि कृष्ण को भेजा जाए कि वो गाय को चराने के लिए जाए। तो पहले ही दिन जब कृष्ण चराने गए गाय को, तो जब ये स्टोरी शुरू होती है, आप कृष्ण बुक में पढ़ेंगे तो पूरी स्टोरी बलराम जी के आसपास शुरू होती है। जब शुरू हुई होती है कथा, तो कृष्ण भगवान, कृष्ण बलराम जी का गुणगान करते हैं, कि बलराम जी को बोलते हैं कि देखो ये पेड़, ये इम्पोस्टलिस्ट सेजेस हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फलों के कारण झुके, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये जो भवरे घूम रहे हैं आसपास, ये सेजेस हैं, है ना। आचार्य बताते हैं कि जितने भवरे घूमते थे बलराम जी के सामने, ये नारद मुनि और आचार्य हैं, क्योंकि ग्वाल बाल के रूप में नहीं आ सकते, इसलिए भवरे के रूप में आके अपनी जो वैदिक हाइम्स हैं वो सुना रहे होते हैं। तो इस प्रकार से उनके आसपास ये पूरी स्टोरी बलराम जी के आसपास ही घूम रही होती है। और कृष्ण बोलते हैं कि इन फीमेल डियर्स को देखो आप, ये इस प्रकार से आपको देख रही हैं जिस प्रकार से गोपियां देखती हैं, है ना। और जब बलराम जी थक जाते हैं तो ग्वाल बाल बैठते हैं बलराम जी को अपने गोद पे, बलराम जी उनकी गोद पे अपना सर रखते हैं, कृष्ण उनके पैर दबाते हैं, तो पूरी स्टोरी उनके आसपास घूमती है। तो जैसे ही तालवन में पहुंचते हैं, तालवन के पास, तो ग्वाल बालों में इच्छा होती है कि ये ताल फ्रूट्स खाने की। अब ग्वाल बाल सीधे तो बोल नहीं सकते, है ना, जैसे कल शुभदेव बंधु प्रभु बता रहे थे कि डिजायर से ही क्या आती है, एनवियसनेस की मेंटालिटी आती है ना, इच्छा द्वेष, ये द्वेष आता है, द्वेष और इच्छा हमेशा आसपास रहता है। तो ग्वाल बालों ने भी इच्छा की भोगने की फ्रूट्स को, जो ताल वृक्ष के फल थे उनको भोगने की इच्छा की, पर इंजॉइंग मोटिव से नहीं। उनको पता था कि अगर कृष्ण को बोलेंगे कि हम ये आप फ्रूट खाइए तो वो मानेंगे नहीं, पर अगर हम कृष्ण को बोलेंगे कि हम खाना चाहते हैं तो हमारी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे कृष्ण। तो इसे पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, कृष्ण को बोला कि हमें बहुत भूख लगी है, हमें फल खाने हैं। तो बलराम जी ने क्या किया, तालवन में गए और एक वृक्ष को हिलाना शुरू किया। जब हिलाना शुरू किया तो इतनी तेज ध्वनि आई, क्योंकि एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से टकरा रहा था। और कुछ आचार्य बताते हैं अपनी कमेंट्री में इस पे कि बलराम जी इतने शक्तिशाली कि जब वो वृक्ष को हिला रहे थे तो सारे वृक्ष भी हिल रहे थे, सारे पर्वत भी हिल रहे थे, और पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था उस समय, कि बलराम जी इतने शक्तिशाली हैं, एक वृक्ष हिलाने मात्र से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। तो वृक्ष हिलाने से क्या है, जितने भी फल थे वो गिरने शुरू हुए। अब धेनुकासुर ने जब ये आवाज सुनी तो दौड़ता वो वहां पर आया, क्योंकि बहुत एनवियस था, ना खुद खाता था ना किसी को खाने देता था, इतना एनवियस था। तो उस समय दौड़कर आया और जब उसने बलराम जी को देखा तो भागता हुआ बलराम जी के पास आया और बलराम जी को अब उसने लात मारी। और जब लात मार के उसने देखा तो बलराम जी वैसे के वैसे ही खड़े थे, बहुत आश्चर्य हुआ उसको। उसने सोचा कि इतनी लात अगर मैं किसी को मारता तो वो मर जाता, इनको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। दोबारा भागा बलराम जी के पीछे, तो बलराम जी ने क्या किया, उसके पीछे के दोनों पैर से पकड़ा उसको, उसको घुमाया और फेंक दिया दूर। जब फेंका तो कुछ देर के लिए, 1 मील दूर फेंका था उसको, कुछ देर के लिए क्या हुआ, वो अनकॉन्शियस हो गया, मरा नहीं। मरता तब है जब बलराम जी आगे के दो पैर से पकड़ के फेंकते हैं उसको, अभी पीछे के दो पैरों से पकड़ा था। तो जब इतनी दूर से फेंका तो वो जब धेनुकासुर खड़ा हुआ, तो हालांकि आगे का पूरा डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवत में नहीं आता, पर गर्ग संहिता में पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। तो धेनुकासुर ने सोचा कि ये व्हाइट वाला थोड़ा खतरे वाला व्यक्ति है, इससे पंगा नहीं लेना इतना। तो उसने कहा कि एक ग्वाल वाले ना इनको मारता हूं, अभी कृष्ण को उसने देखा नहीं था, तो ग्वाल वालों की तरफ देखा, पर ग्वाल बाल क्या थे, बिल्कुल फियरलेस थे, है ना, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, और कृष्ण साथ में थे, बलराम साथ में थे, किसी शक्ति की कमी भी नहीं थी। तो गर्ग संहिता में बताया गया कि जब धेनुकासुर भागता भागता आया मारने के लिए, तो श्रीदाम जो राधा रानी के भाई हैं उनके हाथ में एक डंडा था, उन्होंने डंडे से धेनुकासुर को मारा और धेनुकासुर बहुत दूर जाके गिर गया। उसके बाद सुबल आए और सुबल ने क्या किया, पंच करना शुरू किया, मुक्के मारना शुरू किए। उसके बाद स्तोत कृष्ण ने, उनके पास रस्सी थी जिससे गाय को मारते थे, उससे मारना शुरू किया। अर्जुन अंशु इन्होंने क्या किया, धेनुकासुर को उठाया और काफी दूर फेंक दिया। विशाल वगैरह आके उन्होंने लात मारनी शुरू की धेनुकासुर को। कोई भी ग्वाल बाल डर ही नहीं रहा था, और धेनुकासुर को समझ नहीं आ रहा था ये छोटे छोटे बच्चों ने मेरी ऐसी हालत कर दी है, इतना घबरा रहा था वो, क्या करूं मैं, है ना। एक छोटा सा बच्चा था, तेजस्विनी, हालांकि वो गाय चलाने लायक नहीं था, अभी छोटा बच्चा था, पर बहुत घबराया हुआ। उसने सोचा कि सब मार रहे हैं, मैं क्यों नहीं मारूंगा, मैं भी मारूंगा। उसके हाथ में एक बॉल थी, वो बॉल लेके भाग के गया और धेनुकासुर को मारी उसने। तो हर कोई, अब वो धेनुकासुर खड़ा हुआ, उसने कहा यार ये पहले वाला भी नहीं संभला, ये बच्चे और आगे निकले हैं वहां पर। उसने कहा चलो ये नीले वाला है ना, काले वाला, इसको ट्राई मारता हूं, ये इस पर ट्राई नहीं किया अभी तक। तो भागता भागता गया उसने, जब कृष्ण को मारने के लिए गया तो कृष्ण उसको पकड़ा, घुमाया और 10 मील दूर फेंका उसको। एक घंटे तक मूर्छित रहा, उठा ही नहीं एक घंटे तक। उसके बाद हालांकि गर्ग संहिता में तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बताया गया वो हमारी समझ से काफी ऊपर है, बताया गया कि धेनुकासुर ने जब कृष्ण को टक्कर मारी और 800,000 मील ऊपर, है ना, 8,00,000 मील ऊपर धेनुकासुर ले गया और कृष्ण ने वहां से धक्का दिया और 8,00,000 मील से उसे नीचे गिरा और कई घंटों नहीं उठा उसके बाद। तो ये दरअसल अज्ञानता का लक्षण है। ये धेनुकासुर किसको रिप्रेजेंट करता है, इग्नोरेंस को। हम लोग इग्नोरेंस से फाइट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के लिए चुप होती है फिर निकल आती है, थोड़ी देर के लिए चुप होती है फिर निकल आती है, इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी फिर निकल आती है दोबारा, अज्ञानता, क्योंकि कई कई जन्मों से अज्ञानता में डूबे हुए हैं। तो इसके बाद वो उसने दोबारा ट्राई मारा बलराम जी पे। अब की बार बलराम जी ने आगे के दो पैरों से पकड़ा धेनुकासुर को और इतनी तेज घुमाया कि बताया था कि केवल स्पिनिंग में, घुमाने में ही धेनुकासुर ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये इग्नोरेंस, अज्ञानता जो भय को जन्म देने वाली है, अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें शरण लेनी पड़ेगी गुरु की। बिना गुरु की शरण लिए, बिना गुरु से प्रार्थना किए, बिना नित्यानंद प्रभु के शरण लिए इस अज्ञानता से बाहर नहीं निकला जा सकता। और साथ साथ क्या करना पड़ेगा, इससे निकलना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भावना में के कुछ अंगों को अपनाना पड़ेगा, जैसे श्रीमद भागवतम का पाठ करना, है ना, श्रीमद भागवतम पढ़ना, रीडिंग श्रीमद भागवतम, हियरिंग, सुनना उसको। श्रीमद भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बताया गया है कि अगर हमें, देखिए, अज्ञानता को हटाया जा सकता है श्रवण करने मात्र से या शास्त्रों के अध्ययन से, पर कौन व्यक्ति श्रवण और शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, यह श्रीमद भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया है। शुश्रूषो शब्दधानस्य वासुदेव कथा रचि स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्था निषेवणात्। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है उसकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है, ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो कैसे हमारा कथा सुनने में लगाव उत्पन्न होगा, जब उनकी सेवा करनी जाएगी, जो महा उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है, जो भक्त हैं, जो सभी पापों से मुक्त हैं, जब उनकी सेवा की जाती है तो समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो श्रील प्रभुपाद ने इसका माया का, अज्ञानता का उदाहरण दिया है कि माया हमेशा और अज्ञानता हमारे साथ वैसी ही रहती है जिस प्रकार हमारी परछाई हमारे साथ रहती है हर पल, है ना। कृष्ण भूली जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तार झापटिया धरे। कृष्ण को भूलकर जीव जब भोगवांछाओं में लगता है तो पास में ही माया खड़ी है जो क्या करती है, झापटिया धरे, झपट्टा मार देती है, हमारे पर कब्जा कर लेती है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपल फॉर्मूला बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, सर्विंग डिवोटीज, भक्तों की सेवा करना। भक्तों की सेवा करने से क्या होगा, कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण प्रसन्न होंगे तो क्या होगा, हमारा टेस्ट, हमारी रुचि उत्पन्न होगी कथा में। कथा में रुचि उत्पन्न होने से क्या होगी, हमारी जो अज्ञानता है वो खत्म होगी। अज्ञानता खत्म होने से क्या होगा, और रुचि उत्पन्न होगी कृष्ण कथा के प्रति। जब अज्ञानता खत्म होगी और जब और रुचि उत्पन्न होगी हमारी कृष्ण कथा में, तो जितनी भी अज्ञानता है उसका सबका नाश हो जाएगा। और जैसे ही फियर डिस्ट्रॉय होगा, फियर डिस्ट्रॉय होने मात्र से हमारा, इग्नोरेंस डिस्ट्रॉय होने मात्र से हमारे अंदर का फियर, भय पूरा निकल जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो भक्तों की सेवा से होती है ना। इसका उदाहरण है कालिदास, श्री चैतन्य चरितामृत में कालिदास, जिन्होंने भक्तों की, हर भक्त का महाप्रसाद खाया था, हर भक्त की सेवा की थी, है ना। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के अंकल थे कालिदास, और जब उन्होंने यदु ठाकुर को कुछ आम खाने के लिए दिए तो झाड़ी के पीछे से छुपकर देख रहे थे कब वो आम फेंकेंगे, छिल्ला किसके। तो जैसे ही छिलके गुटली फेंके और उन्होंने खाया तो बहुत प्रसन्न हुए। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर रहे थे जगन्नाथ जी के मंदिर में, तो उनके पैर जिस स्थान पर धोए जा रहे थे, जब पैर धोए गए तो कालिदास ने उस चरणामृत को पिया, एक बार, दूसरी बार पिया, तीसरी बार पिया। जब चौथी बार पीने गए तो चैतन्य महाप्रभु ने रोक दिया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं इसमें कि जो कृपा कालिदास को प्राप्त हुई है ये कृपा किसी को प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में क्लीनिंग कर रहे थे और किसी भक्त ने उनके पैर धो के पीने की कोशिश की, तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उसको मंदिर से बाहर निकाल दिया था, और स्वरूप दामोदर को कंप्लेंट की थी कि अपनी बंगाली वैष्णवों को संभालो, इनको एटिकेट्स नहीं है, कैसे ट्रीट करना चाहिए, तुरंत बाहर निकाला था। तो चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसके अंत में बताते हैं, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन महाबल। ये तीन भक्त बल बताए गए हैं, भक्तों के चरणों की धूलि, भक्तों के चरणों का जल और भक्तों के महाप्रसाद, ये तीन महाबल हैं। इसका पर्पस है कि सर्विंग डिवोटीज, भक्तों की सेवा करना। श्रील प्रभुपाद जब पहली बार आए थे तो श्रील प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्य प्रभुपाद के साथ आए थे, तो प्रभुपाद जी के साथ एक शिष्य आए थे। प्रभुपाद जब प्रसाद पाते थे तो महाप्रसाद सब में बंटता था, तो महाप्रसाद सब में बटा और सब भक्त प्रसाद पा रहे थे, तो एक भक्त की प्लेट में गुलाब जामुन महाप्रसाद आया प्रभुपाद का, तो भक्त बहुत खुश था, है ना। तो बस वो खाने वाला था, एक भक्त आया, उसको गुलाब जामुन को उठाया, तुरंत खा गया। वो इतना दुखी हुआ वो भक्त, अगले दिन प्रभुपाद के पास गया कंप्लेंट करने के लिए। उसने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद ऐसे ऐसे हुआ था, आपका महाप्रसाद मिला था गुलाब जामुन का। तो वो भक्त आए तो उन्होंने खा लिया तुरंत। उसने एक्सपेक्ट किया था कि मैं प्रभुपाद के पास जाऊंगा और प्रभुपाद कहेंगे तो गलत किया उसने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गलत है ये तो। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए, प्रभुपाद ने कहा कि ओ ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, है ना, कि जब भी मौका मिले ऐसी चीजों का तो इसमें चूकना नहीं चाहिए, तुरंत दे लेना चाहिए, इस संभालने की चीज नहीं है। तो ये इसमें, यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम अज्ञानता से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु की शरण लेनी पड़ेगी और भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। भक्तों की सेवा करने माध्यम से, गुरु की शरण लेने माध्यम से, बलराम जी से प्रार्थना करने माध्यम से, इन चीजों से हम अज्ञानता से बच सकते हैं। और जैसे ही अज्ञानता का नाश होगा, भय अपने आप ही निकल जाएगा। क्योंकि क्या है, असत्य र सत्य करी मानी, अभी हम असत्य को सत्य मान के बैठे हैं, पर क्या है, नित्य ये र चरण सत्य, नित्यानंद प्रभु के चरण है, चरण कमल है, यही एकमात्र सत्य चीज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लेनी पड़ेगी। जब नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लेंगे, गुरु की शरण लेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, तो अज्ञानता अपने आप ही खत्म होगी। और दूसरा, जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप किस प्रकार से भयभीत हो गए थे उस ध्वनि को सुनकर, तो हमारा मन भी वैसा ही है, एक असुर की तरह जो हर चीज में आगे बढ़कर आता है, है ना, हर सही काम करने के लिए मन को रोकता है। तो जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया था उस ध्वनि से, उस प्रकार से मन भी भयभीत होता है ध्वनि से, साउंड वाइब्रेशन से। और वो साउंड वाइब्रेशन क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ना केवल ये साउंड वाइब्रेशन बल्कि हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि संकीर्तन में इतनी शक्ति, इतना शोर होता है कि मन बिल्कुल घबरा जाता है। अगर आप जप करने बैठेंगे तो ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, पर अगर आप संकीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो घंटों घंटों आप बैठ सकते हैं। क्योंकि मन क्या होता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, डर जाता है, उसमें भयभीत हो जाता है। हालांकि भयभीत जब हिरण्यकश्यप हुआ था तो उसने हार नहीं मानी थी, लड़ा था वो, है ना। तो मन भी जब भयभीत होगा तो और बढ़कर आएगा आगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी यही है, हरिनाम संकीर्तन। तो भक्तों को घबराना नहीं चाहिए। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कि इस किसी भी चीज में स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, छोटी से छोटी सेवा भी की गई बड़ी से बड़ी भय से बचा सकती है। तो भक्तों क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने चाहिए, गुरु के आश्रण में और कुछ भक्तों की सेवा करनी चाहिए, नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी चाहिए। तो यही लेसन हम यहां से ले सकते हैं कि अगर अपने माइंड को, अगर हम अपने मन को या अपनी अज्ञानता को हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम शास्त्रों का अध्ययन करें, गुरु की शरण लें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की।